पाठ 28, अध्याय 28 और 29, उत्पत्ति 28 पूरा पढ़ें। इसहाक रिबका से सहमत होने के बाद कि परिवार को आखिरी चीज की जरूरत है कि विवाह के माध्यम से कबीले में अधिक कनानी महिलाओं को जोड़ रहा जाए, उसने याकूब को मेसोपोटामिया में अपनी मां के परिवार से एक पत्नी लाने का निर्देश दिया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि उलझा हुआ परिवार वचन उस युग की सामाजिक संरचना को स्पष्ट करने में ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि इसहाक यह सब एक बेटे के लिए मांग रहा है जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है। फिर इसहाक ने याकूब को आशीष दिया, इससे पहले कि वह विदा हो जाए, वह आशीष हम पद 3 और 4 में देखते हैं। आइए इस आशीष के लिए जल्दबाजी न करें। यदि परमेश्वर ने मुझे पुराना नियम के बारे में एक बात दिखाई है तो वह यह है कि जब कोई आशीष या अभिशाप सुनाया जाता है तो आप हमेशा करीब से देखना चाहते हैं। हम इन्हें लंबे समय से विलुप्त हो रही संस्कृति की विचित्र और कभी कभी हैरान करने वाली कहावतों के अलावा कुछ ज्यादा ही पढ़ते हैं, लेकिन लगभग एक गलती के साथ वे भविष्य सूचक हैं और हमें अंततः पुराना नियम के बाद के हिस्सों में या कभी कभी नया नियम में उस आशीष या अभिशाप का लिंक मिलेगा। उत्पत्ति 27 का 27 से 29 में हम उस आशीष को देखते हैं जो इसहाक ने याकूब को दिया था, वह आशीष जिसे एसाव ने मान लिया था कि उसे धोखा दिया गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें उस वाचा के वादे के केवल कुछ तत्व शामिल थे जो परमेश्वर ने मूल रूप से अब्राहम से किया था, फिर उसे पूरी तरह से इसहाक को सौंप दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसहाक अपने विश्वास के साथ वास्तविक लड़ाई के बीच में था। मुझे लगता है कि हम यह भी सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि इसहाक को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसने जिसे आशीष दिया था वह ऐसा था जो निश्चित रूप से ऐसा नहीं था, और वह अपने जुड़वाओं बेटों में से किसी के चरित्र से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। तो या तो उसने आधे अधूरे मन से आशीष दिया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका बेटा वास्तव में इसे आगे बढ़ाएगा, या वह इसका कुछ हिस्सा तब तक रोक रहा था जब तक कि उसे सही समय का एहसास नहीं हो गया। अब कई साल पहले जब अब्राहम को परमेश्वर द्वारा वाचा का वादा दिया गया था तो वाचा के तत्वों में से एक में यह शामिल था कि अब्राहम एक महान राष्ट्र का पिता होगा। अगर हम पीछे मुड़कर उत्पत्ति 12 का 2 को देखें तो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्रानी वचन गोए था, और जब गोए का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ आमतौर पर अन्य जाति राष्ट्र होता है। हालांकि मुझे इसका थोड़ा और विश्लेषण करने दीजिए, अब्राहम के समय में गोए वचन को पूरी तरह से गैर इब्रानी अर्थ में लेने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इसहाक के जन्म तक इब्रानी और गैर इब्रानी के बीच कोई अंतर नहीं था, अब्राहम द्वारा निर्मित इब्रानी राष्ट्र है। यद्यपि अब्राहम को पहला इब्रानी कहा जाता था, यह उसके पुत्रों इश्माएल और इसहाक के जन्म के साथ था कि रास्ते में पहला कांटा इब्रानी और गैर इब्रानी संतानों के बीच भेदभाव वास्तव में घटित होगा। इसहाक इब्रानी और इश्माएल और सभी उसके अन्य बेटे और बेटियाओं गैर इब्रानी थे। इसलिए जैसा कि इब्रानी लोगों के शुरुआती विकास में उत्पत्ति 12 का 2 में गोए का उपयोग किया गया है, यह इब्रानी और गैर इब्रानी दोनों देशों का उल्लेख कर रहा है। इब्रानी या गैर इब्रानी होने की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर राष्ट्र। अब उत्पत्ति 28 का 3 पर वापस आकर हम देखते हैं कि वही आशीष प्रतीत होता है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था और फिर अब्राहम ने इसहाक को दिया था, अब इसहाक द्वारा याकूब को हस्तांतरित किया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां अधिकांश बाइबल कहती हैं कि इसहाक ने याकूब से कुछ ऐसा कहा था ताकि तुम लोगों की कंपनी बन जाओ या राष्ट्रों की कंपनी बन जाओ, लोगों की कंपनी या देशों की कंपनी के लिए इब्रानी में कहल अम्मिम है। यह परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था और इसहाक से जो वादा किया गया था उससे पूरी तरह से अलग है, अर्थात वे गोए उत्पन्न करेंगे, राष्ट्रों का एक प्रकार इसके सबसे शाब्दिक अनुवाद में कहल अम्मीम का उपयोग इब्रानी में इस बात के विपरीत के रूप में किया जाता है कि ईश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था। शाब्दिक रूप से कहल अम्मीम का अर्थ है साथी देशवासियों का पवित्र सम्मेलन। दूसरे वचनों में कहें तो इसका मतलब पवित्र उद्देश्यों के लिए लोगों की एक सभा है जिसमें एक ही जनजाति या जनजातियों के समूह के लोग शामिल होते हैं, यानी याकूब, जिसका नाम जल्द ही इज़राइल रखा जाएगा, केवल इब्रानियों का उत्पादन करने की वाचा की पंक्ति में पहला होगा। वह केवल इब्रानी लोगों के राष्ट्रों का उत्पादन करेगा, केवल वे लोग जो मूसा के समय तक उसका, परमेश्वर का अनमोल खजाना कहलाए जाएंगे। मुझे इसे फिर से सारांशित करने दें। अब्राहम ने इब्रानी और गैर इब्रानी दोनों संतानें पैदा की, जैसा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 का 2 में उससे वादा किया था। इसहाक इब्रानी था। अब्राहम के बेटे इसहाक ने भी इब्रानी और गैर इब्रानी लोगों को जन्म दिया। याकूब इब्रानी था, लेकिन याकूब ने केवल इब्रानियों को पैदा किया, इसराइल के सभी गोत्रों को, जो वास्तव में कहल अम्मीम का आशीष है। देशवासियों का एक पवित्र सम्मेलन हमें बता रहा है। खैर, आगे बढ़ते हुए पद 6 से शुरुआत करते हुए हमें बताया गया है कि एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को पत्नी लाने के लिए मेसोपोटामिया भेजा था, क्योंकि उसके पिता कनानी महिलाओं से घृणा करते थे। बेचारा एसाव, उसने पहले से ही 2 कनानी पत्नियां ले ली हैं, जिससे उसके पिता बहुत नाराज हो गए थे, और अब सुधार करने के गलत प्रयास में वह अपने पिता के भाई के परिवार एसाव के चाचा इश्माइल बेटे अब्राहम को भेज दिया था, और एसाव एक इश्माइली महिला को ले जाता है, उनकी तीसरी पत्नी। क्या बकवास है। लेकिन इस घटना के बारे में जितना तथ्यपूर्ण बताया गया है उसके भविष्य के प्रभाव की गणना से परे है, क्योंकि यहां अंतर्विवाह के माध्यम से एक गठबंधन बनता है जो 2 बेदखल ज्येष्ठ पुत्रों को बांधता है, जिसे यहोवा ने वादे की वाचा रेखा के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में खारिज कर दिया है। इश्माइल और एसाव, जो जल्द ही राष्ट्रों के एक स्थायी इसराइल विरोधी समूह में बदल जाएंगे, यह इश्माइल और एसाव का गठबंधन और जीन पूल मिश्रण है जो आज दुनिया में इस्लाम के विशाल बहुमत और अरबों के पूरे समूह का निर्माण करता है। मैं ऐसे कुछ वचनों की इस रिपोर्ट ने इतिहास के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदल दिया और उन परिस्थितियों को गति प्रदान की जो ईसा विरोधी और इतिहास के अंत को जन्म देंगी, जैसा कि हम जानते हैं। याकूब बेरशेबा छोड़ देता है और लगभग 40 मील की यात्रा करता है, जब वह 2 या 3 दिनों के बाद एक गुमनाम बहुत चट्टानी जगह पर रात के आराम के लिए रुकता है। यहीं तोरह में हम याकूब को अपने लिए एक अलग पहचान बनाते हुए पाते हैं, जो उसे तीसरा और आखिरी कुलपति बनने की अनुमति देता है। उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी भूमि और अपने पिता, माता और भाई बहनों को छोड़ दे, ताकि परमेश्वर उसके साथ काम कर सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दादा अब्राहम के साथ हुआ था। वहां याकूब को एक स्वप्न आया, वास्तव में एक दर्शन, और इसमें उसे स्वर्गीय आत्मा की दुनिया की झलक दी गई है। वह इब्रानी में स्वर्गदूतों मैलाक एलोहिम को देखता है, इसलिए हम जानते हैं कि ये स्वर्गीय दूत स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग से पृथ्वी पर आते जाते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर से अपने निर्देश प्राप्त करना और फिर पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ना, और वहां परमेश्वर स्वयं याकूब को भूमि और कई वंशजों का वादा देता है, और यह कि ये वंशज पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीष देंगे। वह याकूब से यह भी कहता है कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह जहां कहीं भी जाए परमेश्वर उसके साथ रहेगा, और वह उसे इस देश में वापस लाएगा, क्योंकि उसने याकूब और उसके वंशजों को हमेशा के लिए भूमि देने का वादा किया है, और जैसा वादा किया गया था वैसा ही होगा। वैसे पद 13 में जहां अधिकांश बाइबल परमेश्वर या परमेश्वर कहते हैं, मूल इब्रानी याहवे है, परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम, तो यह परमपिता परमेश्वर याकूब से बात कर रहा था और याकूब इसके बारे में काफी जागरूक था। लेकिन इस प्रकरण का पूरा स्वर आश्चर्य का है। पहला इसलिए क्योंकि याकूब को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर इस तरह से उसके पास आएंगे, और दूसरा इसलिए क्योंकि याकूब शायद इस समय काफी पराजित महसूस कर रहा था।
मेसोपोटामिया की यह कोई सुखद यात्रा नहीं थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वह अपनी ही बनाई आपदा के दृश्य को छोड़ रहा था। उसने आशीष प्राप्त करने के लिए अपने पिता और अपने भाई को धोखा दिया था और जीवित रहने के लिए उसे खाली हाथ जाना पड़ा।
याकूब पर यह आशीष, यदि आप चाहें तो इसहाक से याकूब के लिए वाचा के वादे के आधिकारिक हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करता है। याकूब को कुछ दिन पहले उसके पिता ने इसी तरह का आशीष दिया था, लेकिन अब केवल यहोवा उन आशीषों को मान्य करता है। यह भी ध्यान दें कि उत्पत्ति एक से शुरू होने वाले हमारे तोरा अध्ययन के बाद से हमने परमेश्वर को अपने निवास स्थान को स्वर्ग से पृथ्वी, ईडन गार्डन और फिर से वापस स्थानांतरित करते देखा है। और आइए इस सीरी या शायद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीरी को बहुत जल्दी पार न करें, क्योंकि यह आने वाले समय का एक और बाइबल प्रकार है। आप देखते हैं इन दो तथ्यों ने एक साथ काम किया। यह सीरी मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती थी। वर्तमान में टूटा हुआ प्रारंभ में मनुष्य सीधे ईश्वर के पास आ सका, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के साथ मौजूद था। लेकिन विद्रोह और पाप ने उस संबंध को तोड़ दिया और परमेश्वर ने स्वयं को स्वर्ग में वापस ले लिया। फिर भी जो लोग भरोसा करते हैं उनके लिए सीरी है, जिसके माध्यम से परमेश्वर पृथ्वी पर अपना कार्य करने के लिए अपने सेवक स्वर्गदूतों को भेजते हैं। बाद में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक और संबंध आएगा, वाइल्डरनेस टैबरनेकल। भविष्य में और भी आगे असली सीरी आएगी, वह जो ईश्वर को मनुष्य से पुनः जोड़ देगा, यीशु। सोचिए यह सिर्फ रूपक है या एक अच्छी कहानी। सुनिए यीशु स्वयं यूहन्ना 1:51 में क्या कहते हैं, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। ओह, तोरह का पूरी तरह से अध्ययन न करने से हम क्या चूक जाते हैं। यहां उत्पत्ति में याकूब के साथ क्या हो रहा था, इसे पहले देखे बिना दुनिया में हम 1800 साल बाद यीशु द्वारा दिए गए इस तरह के अजीब बयान को पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं, और जिसे हम नया नियम कहते हैं उसमें दर्ज किया गया है। फिर भी एक बार जब हम दोनों को जान लें तो लिंक बनाना कितना आसान है। याकूब के लिए ये वर्तमान वास्तविकता और भविष्यवाणी दोनों थी। हमारे लिए ये केवल वास्तविकता नहीं है, ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। यीशु हमारी सीरी है, एकमात्र सीरी जो हमें ईश्वर से पुनः जोड़ती है। ये उसी पर है कि आज हमारे समय में स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। याकूब को जो कुछ दिखाया गया उससे वह सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने उस स्थान को परमेश्वर का घर कहा, या जैसा कि हम इसे बेहतर जानते हैं, बेथ एल बेथ, घर एल परमेश्वर, या अधिक सही ढंग से एल बेथ एल, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर एल। मिस्र से पलायन से पहले होने वाले एल वचन के उपयोग को देखें, क्योंकि माउंट सिनाई में परमेश्वर द्वारा मूसा को अपना व्यक्तिगत नाम देने तक परमेश्वर को एल शादाई के नाम से जाना जाता था, एल भाग पर जोर देने के साथ। दूसरे वचनों में माउंट सिनाई से पहले कोई भी परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम नहीं जानता था, इसलिए उन्हें कई उपाधियों से जाना जाता था, जिनमें से अधिकांश की शुरुआत आई एल से होती थी या ईएल। माउंट सिनाई के बाद हम देखेंगे कि एल वचन का उपयोग कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसे धीरे धीरे यहोवा वचन से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
यहां एक और दिलचस्प घटना है जिस पर हमें नजर डालनी चाहिए, उस पत्थर का अभिषेक जिस पर याकूब ने उस दर्शन के दौरान सोने के लिए अपना सिर रखा था। इसका अर्थ क्या है? खैर, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि तेल से अभिषेक करने की यह अवधारणा कितनी पुरानी है, क्योंकि यह 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो रही है। याकूब के मन में इसका वास्तव में क्या अर्थ था यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात से कुछ लेना देना था। संभवतः इसका मतलब याकूब और यहोवा के बीच एक नई वाचा का बंधन स्थापित करना था, जिसमें एक प्रतिज्ञा शामिल है, क्योंकि उस समय किसी चट्टान पर तेल से अभिषेक करने के बाद उसे स्मारक चिन्ह के रूप में उपयोग करना अज्ञात था, और हम इसे बाइबल में भी उस उद्देश्य के लिए नहीं पाएंगे। इस युग में तेल से अभिषेक काफी व्यापक रूप से उपयोग में था,
और अक्सर एक समझौते के निर्माण को चिह्नित करता था जो कि नमक की अधिक व्यापक वाचा के विपरीत नहीं था जिसमें पशु बलि शामिल थी। सीमाओं को चिह्नित करना और एक पत्थर का उपयोग करके स्मारक चिन्ह बनाना, उन्हें स्थायी पत्थर कहा जाता था, भी आम था, लेकिन उनका तेल से अभिषेक नहीं किया जाता था।
फिर भी मुझे लगता है कि यह उससे भी आगे जाता है। यहां हमने याकूब को एक चट्टान पर आराम करते और फिर उसका अभिषेक करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि इसके और मसीहा के बीच कोई संबंध है, क्योंकि मसीहा का इब्रानी में अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। किसी को यह भी पूछना चाहिए कि यीशु को सभी चीजों में से एक चट्टान अक्सर क्यों कहा जाता है। अब निश्चित रूप से प्रतीकात्मक रूप से हम एक चट्टान की ठोसता और स्थिरता की भौतिक विशेषताओं को देख सकते हैं और इसे यीशु पर लागू कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि नए नियम का संदर्भ पुराने नियम के संदर्भ के समान ही इब्रानी है। यहूदी लोगों ने कोई भी पुराना रूपक नहीं उठाया जो उन्हें प्रभावित करता हो। यह एक प्राचीन पारंपरिक समाज था जिसमें अतीत की घटनाओं में अच्छी तरह से स्थापित अर्थों का एक विशाल इतिहास था। विशेष रूप से इसमें पितृसत्ता शामिल थी। मुझे गंभीरता से संदेह है कि मसीहा यीशु को चट्टान कहने का संबंध याकूब के साथ हुई इस घटना से है जिसके तहत उसने उस चट्टान का अभिषेक किया था जिस पर उसने अपना सिर रखा था। याकूब ने परमेश्वर से शपथ खाई कि वह अपनी सारी निष्ठा उसके प्रति समर्पित कर देगा और परमेश्वर उसे जो भी देगा उसका दसवां हिस्सा वह लौटा देगा। एक बार फिर हम शास्त्र में दशमांश के सिद्धांत को बहुत पहले ही देख चुके हैं।
उत्पत्ति 29 पूरा पर है।
जब याकूब ने अपने परिवार को बेरशेबा में छोड़ा
जरेनिया, तो वह आध्यात्मिक व्याकुलता, भारी मन और भय के साथ था और घबराहट, ग्लानी, लेकिन यहोवा के साथ उसकी मुठभेर के बाद उसमें कुछ बदलाव आया। वह अधिक निश्चित था, केंद्रित, शांत। वह उस आंतरिक स्थिति से भर गया था जिसे अन्य जाति ईसाई बिना समझ के शांति कहते हैं। इब्रानियों का कहना है कि उसे हाशेम का शालोम प्राप्त हुआ। हम नहीं जानते कि याकूब को कनान के दक्षिणी छोर से लगभग 400 मील की यात्रा करके हारान तक पहुंचने में कितना समय लगा, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसने तुरंत अपनी मां के परिवार की तलाश की। कभी कभी हम कनान की भूमि, वादा की गई भूमि जो अंततः इसराइल बन जाएगी, पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि हम वादा की गई भूमि और मेसोपोटामिया के बीच के पैतृक संबंध को भूल जाते हैं। मेसोपोटामिया अब्राहम का जन्म स्थान था और उनके परिवार का एक बड़ा हिस्सा वहीं रह गया।
हम पाते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी खोजने के लिए, जिसे वह निश्चित रूप से अपनी जरे मानता था, एक नौकर को वापस भेज दिया और अब याकूब बिल्कुल उसी स्थान पर उसी उद्देश्य के लिए वापस जाता है। लेकिन अब्राहम का नौकर एलियाजर कैसे हारान आया और याकूब कैसे पहुंचा, इसके बीच कितना अंतर है। एलियाजर इसहाक के लिए संभावित दुल्हन की पेशकश करने के लिए पुरुषों, ऊंटों और उपहारों के एक समूह के साथ पहुंचा। याकूब अपनी पीठ पर शर्ट लेकर पहुंचा और कुछ नहीं। उसकी खोज को एक पानी के कुएं पर पुरस्कृत किया गया जहां भैरों के 3 झुंड पानी पिलाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चरवाहे राहेल, याकूब के पहले चचेरे भाई, उसकी मां की भतीजी लाबान की बेटी की ओर इशारा करते हैं। हम इस बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं कि उन दिनों जलकूप शिष्टाचार कैसे काम करता था। पानी के कुएं महत्वपूर्ण स्थान थे क्योंकि इसे बनाने में काफी काम करना पड़ता था और इसके रखरखाव में काफी सावधानी बरतनी पड़ती थी। इसके अलावा एक कुआं किसी के स्वामित्व में था, या तो स्थानीय राजा या इस मामले में एक स्थानीय परिवार। और चूंकि बस्ती के मनुष्य प्रतिदिन आवश्यक पानी के लिए कुआं खोदते थे और जानवर जो उनके जीवन का हिस्सा थे उन्हें भी नियमित रूप से पीना पड़ता था, कुएं देहाती लोगों के लिए एक बैठक जगह बन गया, ठीक उसी तरह जैसे शहर के द्वार शहरी लोगों के लिए बैठक का स्थान था। और हमने पाया कि कुएं के शीर्ष पर एक बड़ी चट्टान थी। यह सामान्य और प्रथागत था। सबसे पहले यह धूल, छोटे कीड़े और यहां तक कि बच्चों को कुएं में गिरने से बचाने के लिए था। इसे प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन
यह उन लोगों को अपनी मदद करने से रोकने के लिए भी था जो पानी चाहते थे, बल्कि कुएं के मालिक से पानी खरीदना पड़ता था, भैरों के उन झुंडों के साथ चरवाहे। शाम तक इंतजार कर रहे थे कि कब कुएं का मालिक आएगा और रेक उतारेगा और उनसे शुल्क लेगा, तब उनके जानवर पी सकते थे। हमारे दृश्य में याकूब चाहता है कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाएं और चले जाएं, ताकि वह उन परिवार के सदस्यों के साथ निजी बातचीत कर सके जिन्हें वह ढूंढने आया है। तो चूंकि याकूब परिवार है, वह कुएं के मुंह से चट्टान को हटाने और भैरों को पानी पीने की इजाजत देने में उचित महसूस करता है, ताकि चरवाहे चले जाएं।
याकूब ने राहेल को अपना परिचय दिया और जैसा कि प्रथा है, परिवार के इस सदस्य को चूमा। इस युग में चुंबन आवश्यक रूप से कामुकता या स्नेह को दर्शाता नहीं था। आज चुंबन एक अभिवादन था, आम तौर पर हाथ मिलाने के बराबर, हालांकि यह आम तौर पर अजनबियों के बीच नहीं होता था। तब याकूब यह जानकर खुशी से रोया कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है और वह संभवतः अपनी भावी पत्नी से भी मिल चुका है। एक अच्छा दिन था। हमें बताया गया कि राहेल एक चरवाहा है। विश्व के इस क्षेत्र में किसी महिला के लिए यह कुछ हद तक असामान्य व्यवसाय है। दक्षिण में सैकड़ों मील दूर सिनाई और अरब प्रायद्वीप की बेडोइन महिलाएं अक्सर भेड़ बकरियों और झुंडों की देखभाल करती थीं, लेकिन मेसोपोटामिया की महिलाएं और अंततः इजरायली महिलाएं ऐसा नहीं करती थीं। राहेल का पिता लाबान याकूब के आगमन के बारे में सुनता है और उससे मिलने आता है। यह हमारे लिए उस चीज को बेहतर ढंग से समझने का एक अच्छा मौका है, जिसे विद्वान भी बाइबल में विरोधाभास के रूप में पहचानेंगे। पद 5 में जब याकूब ने अपनी मां के परिवार के बारे में पूछताछ की, तो उसने कुछ चरवाहों से पूछा कि क्या वे नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हैं। अब उत्पत्ति के पहले अध्यायों में हमें बताया गया है कि लाबान बतुएल का पुत्र है, नाहर का नहीं। तो क्या देता है? खैर, नाहोर वास्तव में लाबान के दादा हैं, और यहां जो वर्णन किया जा रहा है वह यह है कि लाबान किस कबीले से संबंधित है। नाहोर के कबीले से अक्सर जब हमें बाइबल में लोगों की अधिक औपचारिक पहचान मिलती है, तो वह कहेगी कि अमुक का गोत्र वास्तव में मतलब पिता और पुत्र का जैविक संबंध नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। कभी कभी इसका मतलब पिता और पुत्र होता है, लेकिन अक्सर यह एक व्यक्ति को उसके कुल से जोर देता है, जैसा कि यहां है। ये जानना कि संदर्भ में क्या है और लेखक की अपेक्षा है कि पाठक अच्छी तरह से जानता है कि नाहोर अब्राहम का भाई है और लाबान उसका पोता है। तो नामों के ये कथित विरोधाभास बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। ये उस युग में बोलने और अपनी पहचान समझाने का सामान्य तरीका था। निस्संदेह लाबान अपने भतीजे को अपना आतिथ्य प्रदान करता है। एक महीना बीत जाता है और स्वार्थी लाबान याकूब से सवाल पूछता है, तुम्हारा वेतन क्या होगा? यह संकेत है कि यह समझा जाता है कि याकूब एक अर्धस्थायी आगंतुक है। निसंदेह लाबान देखता है कि याकूब उसके परिवार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होगा, क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली चरवाहा और मेहनती कार्यकर्ता है। उसने संभवतः यह भी देखा होगा कि याकूब सुंदर राहेल के प्रति आकर्षित था। याकूब ने उसके हाथ के बदले में लाबान को अपने परिश्रम के 7 वर्ष प्रदान किए। वैसे यह उस समय का रिवाज नहीं था कि एक पिता अपनी बेटी को दासता के बदले में किसी पुरुष को बेच दे, और थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि लाबान की 2 बेटियां उस शर्म को प्रकट करती हैं जो उन्हें महसूस हुई थी। वास्तव में उन्हें कीमत के लिए बेच दिया गया था, जब वे उत्पत्ति 31:14-15 में कहती हैं, क्या हम परदेशी नहीं गिने जाते, क्योंकि वह लाबान उनका पिता ने हमें बेच दिया है। खैर, 7 साल बीत गए और याकूब अपनी मजदूरी निकालने के लिए लाबान गया, जो कोई और नहीं बल्कि राहेल है। तब याकूब को पता चलता है कि धोखा और विश्वासघात कितना विनाशकारी हो सकता है। शादी समारोह के बाद लाबान ने राहेल को अपनी बरी और अभी तक अविवाहित बेटी लिया के लिए छोड़ दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। याकूब ने तुरंत उस दिन के बारे में सोचा जब उसने खुद को अपने भाई के रूप में प्रसन्न किया था और अपने पिता को बेवकूफ बनाया था। उसने यह मान लिया होगा कि अब वह जो अनुभव कर रहा था वह उसके पिता इसहाक और उसके साथ किए गए गंदे व्यवहार के लिए परमेश्वर का बदला था। भाई, यह सब कई वर्ष पहले। वास्तव में याकूब द्वारा दुल्हन प्राप्त करने की इस कहानी में धोखा देना वचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह याकूब द्वारा एसाव से आशीष चुराने की कहानी में धोखा देना के केंद्रीय विषय से बहुत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए लाबान की और 7 वर्षों की दासता के बदले में याकूब को राचेल भी मिलती है, जिससे वह अपने और उसकी स्थानापन्न दुल्हन लिया के बीच प्रथागत 7 दिवसीय विवाह समारोह के तुरंत बाद शादी कर लेता है। 80 साल का यह बुजुर्ग आदमी अचानक खुद को एक नहीं बल्कि 2 पत्नियों को खुश करने की स्थिति में पाता है। याकूब का एक और काला पक्ष अब हमारे सामने आया है, जिसमें वह गलत तरीके से प्यार करता था और खुले तौर पर लिया की तुलना में राहेल का अधिक समर्थन करता था। इसका कारण हमें पद 17 में सुलझाया गया है, जब यह कहा गया है कि जबकि लिया की आंखें कमजोर थीं, चूंकि सुंदरता अक्सर लोगों की आंखों की दिखावट से संबंधित होती है, विशेषकर मध्य पूर्वी संस्कृतियों में मजबूत आंखें या कमजोर आंखें ऐसे मुहावरे थे जो सुंदरता या स्पष्टता का संकेत देते थे। तो हमें जो बताया जा रहा है वह यह है कि राहेल को सुंदर माना जाता था जबकि लिया को नहीं, और जाहिर तौर पर मुख्य रूप से शारीरिक सुंदरता के आधार पर याकूब ने अपनी पसंद बनाई। इस बात का कोई संदर्भ नहीं है कि याकूब ने अपनी पत्नी के चयन के बारे में ईश्वर से सलाह ली थी, और यह संदेह करने का हर कारण है कि राहेल के बजाय लिया उसकी पसंद होनी चाहिए थी, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे। कैसी विडंबना है एसाव, पहलौठा, सुंदर और मर्दाना, शांत और स्पष्ट याकूब के लिए परमेश्वर द्वारा पारित कर दिया गया था। राहेल सुंदर और तेज तर्रार, शांत और स्पष्ट लिया के लिए परमेश्वर द्वारा पारित कर दिया गया था। मैं ये क्यों कहता हूं कि राहेल को छोड़ दिया गया, देखते हैं आगे क्या होता है। लगभग तुरंत ही लिया ने याकूब को बच्चे देना शुरू कर दिया। राहेल गर्भवती नहीं हो सकती। सबसे पहले लिया ने रूबेन को गर्भ धारण किया, याकूब की पहली संतान। इस छोटे से तथ्य को कागज पर या अपनी स्मृति में रखें, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में हम इस महत्वपूर्ण विवरण पर वापस आने वाले हैं। वह याकूब को 3 और बेटे देती है, शिमोन, लेवी और यहूदा। इन बच्चों के नामकरण में लिया ने परमेश्वर को सारी प्रशंसा और महिमा दी। रूबेन का अर्थ है देखो एक बेटा, क्योंकि उसे लगा कि परमेश्वर ने देखा है कि याकूब ने उसके साथ 2वें दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किया था, जो केवल राहेल की प्रशंसा करता था। शिमोन का अर्थ है सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे बेटे के लिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी। लेवी का अर्थ है जुड़ा हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उसने याकूब को एक और बेटा दिया है, याकूब उससे और अधिक प्यार करेगा। और यहूदा का अर्थ है प्रशंसा, क्योंकि उसने 4 स्वस्थ पुत्रों का आशीष देने के लिए ईश्वर की स्तुति की। इन बच्चों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हुए लिया अपना चरित्र दिखा रही थी और परमेश्वर उसे इसके लिए आशीष दे रहे थे। उसने न केवल याकूब के पहले बच्चे को जन्म दिया बल्कि अन्य 2 को भी देखा, लेवी और यहूदा। लिया जो सीधी सादी थी को इसराइल के पासवानों और परमेश्वर के सेवकों की पंक्ति को जन्म देने और ले जाने का सम्मान दिया गया था लेवियों को, और यहूदा को इस संसार में ला रहा है जिससे प्रतिज्ञा की पंक्ति यीशु में पूरी होगी, क्योंकि यीशु यहूदा का निवासी था। हम यहूदा के वंशजों को यहूदी कहते हैं। इस अध्याय के दुखद अंत में हमें बताया गया कि लिया ने अचानक बच्चे पैदा करने की क्षमता खो दी।